परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भक्तजनों को संबोधित करते हुए यह आनंद हो रहा है कि यह जीवन कई संधियों से बना हुआ है। इस जीवन में न जाने कितने जोड़ हैं और न जाने कितने मोड़ हैं, और उसी जोड़ और मोड़ पर जगह जगह जोड़ और तोड़ लगे हुए हैं, और उसमें ये जो रण छोर है इसको बिना याद किए व्यक्ति की गति नहीं है। भगवान के भक्तों में कुछ प्रिय भक्त होते हैं जो शरीर से दूर हो जाते हैं, फिर भी उनके मन के अंदर से भगवान का स्मरण रूपी जो वासना है वह नहीं जाती है, वह हमेशा स्मरण से वही बने होते हैं। गोपियां कहीं भी जाती है तो भगवान का स्मरण उनको होता ही रहता है, भले भगवान चले जाए लेकिन उनके मन में उनका ही स्मरण बना रहता है, हमेशा समाधि लगी रहती है। वैसे ही स्थिति हो जाती है जब भक्त को किसी प्रकार का आनंद भगवान से मिल जाता है, वैसे छटपटाहट होती है। इसी प्रक्रम में आप देखें तो भगवान के भक्त तो सब है। महाराज जी ने जैसे कहा कि रावण को भी भगवान ने रावणारी बनकर के अपने से जोड़ दिया, तो वैसे ही यहाँ एक जोड़ा हुआ भक्त है जिसका नाम जरासंध है। कहा जरासंध किसे कहते हैं, पहले शब्द को थोड़ा समझ लेते हैं। जरा कहते हैं, जरा नाम की एक राक्षसी थी जिसने ला करके उसका संधान कर दिया, उल्टे पैदा हुआ था उसको ला करके जोड़ा तो उसकी संधि हो गई, तो जरा नाम के रक्षा राक्षसी के द्वारा जिसकी संधि हुई हो, संधान हुआ हो, उसे हम जरासंध कहते हैं। और जरा कहते हैं वृद्धावस्था को भी। तो जरावस्था में यदि वृद्धावस्था में आप भगवान के साथ जोड़ोगे तो आपका भी संधान हो जाएगा, आप भी हमेशा के हमेशा हमेशा के लिए भगवान के साथ बने रहोगे, क्योंकि वृद्धावस्था में व्यक्ति उपेक्षित होता है घर के द्वारा परिवार के द्वारा, इंद्रियां काम नहीं करती है। तो उस स्थिति में जब लोक से उसका सिर जलता है तो भगवान को स्मरण करता है तो वह भी जरा संधि रूपी स्थिति को प्राप्त होता है, और इसके बाद भी यदि सांसारिक वासना उसे छोड़ती नहीं है तो फिर दुर्गति उसकी होती है जरासंध की। स्थिति क्या है कि अस्ति और प्राप्ति ये दो उसके जीवन में है। वो उसकी दोनों पुत्रियां थी, जिसने अस्ति को जन्म दिया हो और जिन्हें प्राप्ति को जन्म दिया हो। अस्ति मतलब हमारा भी कुछ है, और प्राप्ति मतलब हमको हमेशा दूसरे से कुछ न कुछ प्राप्त होते रहे, हम सबसे ले लें और हम किसी को दें नहीं, ये अस्ति और प्राप्ति है। अस्तित्व की लड़ाई कि हम बड़े हैं हम सब ले लेंगे। उसने अपनी दो कन्याओं को दिया था, वो कन्याएं कंस को दिया था, जरासंध की जो दो पुत्रियां थी अस्ति और प्राप्ति, उन दोनों को उसने बड़े बलिष्ठ व्यक्ति के साथ शादी किया था, वह था कंस। अब पिता के सामने जब उसकी पुत्री विधवा हो जाए तो वो बौखलाया और सेना लेकर के यादवों के ऊपर चढ़ाई कर दिया, मथुरा पहुंच जा रहा है जरासंध मारने के लिए। 23 अक्षौहिणी सेना है उसके पास, 23 अक्षौहिणी। कहा कि अक्षौहिणी सामान्य सेना नहीं होती है, हाँ 23 के ऊपर 24 शून्य। हमारे गुरु जी कहा करते थे, अयुतं च नागा त्रिगुणी रथानाम लक्षैक योद्धा, 1,00,000 योद्धा, 10,00,000 बाजी नाम, 10,00,000 खाली घोड़े वाले, पदाति संख्या 37 कोटयः, 36 करोड़ पैदल चलने वाले जहां होते हैं, अक्षौहिणी ताम मुनयो बदंती, उसको मुनि लोग अक्षौहिणी कहते हैं। आज लोग कहते हैं कि उतनी जनसंख्या भी नहीं है, कहां से होगा, लेकिन काल के परिमाण से धरती संकुचित होती है और फैलती है। जैसे मनुष्य का शरीर छोटा बड़ा हुआ करता है युगानुगुण, क्योंकि कलयुग में परमायु मनुष्य का 6 वर्ष का बतलाया, 6 साल का पुराण में आया। आपने राणा प्रताप की तलवारों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता है कि ये किसी मनुष्य का होगा और मनुष्य चलाता होगा, क्यों? आ तो दिनानुदिन हमारी जो स्थिति है वो क्षय हो रही है, तो पृथ्वी में भी संकुचन होता है, बीज भी छोटे छोटे होते हैं। तो स्थिति यह है कि वो जो 23 अक्षौहिणी है, वह जिस युग की बात है, वह युग द्वापर युग की बात है। आज कलयुग है तो कलयुग के हिसाब से धरती रहती है, द्वापर युग में धर्म कार्य अधिक होता है, सत्ययुग में और भी अधिक होता है, इसलिए उस स्थिति में पृथ्वी फैलती भी है, कोई चीज कटती है, क्योंकि 6 अवस्था मनुष्य की होती है ना। पहले वो अस्थि मतलब उसका अस्तित्व होता है, फिर जायते फिर वो उत्पन्न होता है, फिर वर्धते फिर बड़ा होता है, वर्धते के बाद विपरिणमते उसमें परिणाम आते हैं फल फूल, फिर अपक्षीयते फिर वो धीरे धीरे संकुचित हो जाता है, जैसे चमड़ी झूल जाती है वृद्धावस्था में, इसको अपक्षय बोलते हैं, पुनः विनश्यति। तो जिस सृष्टि में प्रारंभ से सत्ययुग आया, धर्माधारित सृष्टि थी, तो वहां सृष्टि की पराकाष्ठा होगी वृद्धि की। बाल्यकाल में हमारे अंदर जितनी शक्तियां आती हैं, जितना बालक दौड़ सकता है उतने वृद्ध नहीं दौड़ सकते, और युवावस्था में संतान उत्पत्ति की क्षमता आती है, वृद्धावस्था में हम संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, शरीर अपक्षय होता है, उसके बाद विनाश होता है। तो ये अपक्षय दशा पृथ्वी की है, इसलिए पृथ्वी में संकुचन हुआ। तो जब संकुचन हुआ तो हम कहेंगे कि उतनी तो भूमि अपने पास भी नहीं है जो कुरुक्षेत्र का वर्णन आता है, इसलिए वो उस युग की बात है, इस युग में उसमें संकुचन हुआ है। जैसे चमड़ी सिकुड़ जाए व्यक्ति के मुंह का तो कहेंगे कि अब छोटे दिख रहे हो, उसी तरह से पृथ्वी की भी ये दशा है, कलयुग में वो संकुचित हो जाए। इसलिए ये सब झूठी बात नहीं मानना चाहिए, क्योंकि झूठी यदि हमें लगता है तो हम मोह में है, क्योंकि भगवान मोह में प्राणी को डालता है जानने के लिए कि देखे इसको हम पर विश्वास है कि नहीं। इसलिए ये शास्त्र को पढ़ने के बाद उसको आद्योपांत समझना चाहिए। तो 23 अक्षौहिणी सेना के साथ जरासंध मथुरा को चारों तरफ से घेर लेता है। राम भगवान जो बलराम थे, राम यहां बलराम समझिएगा, क्योंकि 2 अक्षर जो है ना छूट जाता है, बलराम अवर राम में बल अधिक है, क्योंकि हमारे यहां एक परंपरा है व्याकरण शास्त्र में भी कि यदि 4 अक्षर का नाम हो तो उसमें से आधा बोल करके आदमी का नाम चलाया जाता है। बलराम होगा तो कोई राम कहेगा, कोई बल कह देगा, देवदत्त होगा तो कोई दत्त कहेगा, कोई देव कहेगा, सत्य भामा होगा तो कोई भामा कहेगा, कोई सत्या कहेगा। और यहां भी होता है छोटा छोटा नाम लोग रख देते हैं, मुख सुखार्थ। तो राम मतलब बलराम और श्री कृष्ण दोनों ही को पता चला कि जरासंध ने हमारी पुरी को घेर लिया है, मथुरापुरी को। तुरंत ही दोनों लड़ने के लिए बाहर आए और सोचे कि ये तो तैयारी में आया है, हम लोग तो अचानक ऐसे घिर गए हैं। इसलिए अपने पुराने अस्त्र और शस्त्रों को याद किया, जिसका अभ्यास उन लोगों ने पहले किया था। जैसे अस्त्र शस्त्रों का याद किया, वैसे ही उनका हल मुशल इत्यादि सब कुछ उपस्थित हो गया। और उससे उन्होंने जो मगध का राजा था उसे परास्त कर दिया। और जरासंध भाग करके पुनः मगध पहुंच गया। अब जरासंध देखे आप मगध का राजा है, मगध वो पाटलिपुत्र पटना बिहार इत्यादि वाला जो क्षेत्र है वो मगध है। लेकिन जब भाग गया तो भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, हमने इसे अभय दान दिया, ये भाग गया तो सही, डरा तो सही। तो डर जाना, अपमान होना भी व्यक्ति की एक मृत्यु है।